ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे गुरवे गौरचंद्राय राधिका तदाल्यै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्या प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ संस्थापक आचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभयचरणार भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की अपार कृपा से श्री राधा मदन मोहन मंदिर इस्कॉन उज्जैन की ओर से वार्षिक रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के उत्सव के उपलक्ष्य में शास्त्री नगर के इस उद्यान में 7 दिवसीय भगवद वाणी भगवद गीता के अमृत धारा में आप सबका सायंकाल के 3रे दिन के सत्संग में स्वागत है। भगवान की वाणी श्रीमद भगवद गीता हारे हुए हिम्मत हारे हुए को उठा के जगा के अपने गंतव्य स्थान मंजिल को पहुंचाने का एक भगवान का उद्घोषण है। अर्जुन हिम्मत हार के बैठा था, भगवान ने उसको धर्म की मर्यादा सिखाई और कर्तव्य पालन की उत्तम भगवद गीता में शिक्षा देके सक्रिय किया। तो वो भगवद गीता निष्क्रिय के लिए नहीं है, कुछ छोड़ने के लिए नहीं है, लेकिन अपने आप को भगवान से जोड़ने के लिए। सो हम 7वां अध्याय भगवद गीता का आज भगवान श्री कृष्ण की अनुकंपा रही तो आज पूर्णाहुति करनी है इस अध्याय की। इसमें भगवत ज्ञान के विषय में चर्चा हो रही है, भगवान का ज्ञान, और भगवान का ज्ञान भगवान देते हैं और किसको देते हैं, जो शरणागत होते हैं उसको देते हैं, और जो शरणागत नहीं होता है उसको क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि वो माया से मोहित हो जाता है। और जो माया से मोहित हो जाता है, किसकी माया से, भगवान की माया से, इसके ऊपर कल चर्चा हुई। देवी एष गुणमयी मम माया दुर्दयया, भगवान कहते मेरी माया ये बहुत बड़ी कठिन है, इससे पार पाना। तो भगवान साधन क्या है, आपको जानना है और माया से मुक्त होना है, साधन क्या है। तो कहा ये माम प्रपद्यन्ति माया मेतांतरंति ते, जो मेरा चरण पकड़ लेता है, मेरा शरण ले लेता है, वो इस माया के बंधन से मुक्त हो जाता है। बहुत महत्वपूर्ण साधन, सबसे उत्तम साधन भगवान का आश्रय, भगवान की शरणागति माया से मुक्त कर देती है। लेकिन माया बहुत लुभावनी है, हमको माया नहीं पकड़ती, हम जाके माया को चपक जाते हैं। किसी ने कहा कि भगवान का दर्शन करना है, बोला आप जब भी करना चाहो, भगवान का दर्शन सुलभ है, कब करना चाहोगे, कहां मिलेंगे भगवान। मानो किसी ने कहा कि आप शास्त्री नगर के उद्यान में शाम को आ जाना, भगवान दर्शन देते हैं, 7 बजे आरती होती है, भगवान का दर्शन होता है, साक्षात भगवान भी आ जाते हैं। तो लोगों ने कहा 7 बजे आज भगवान का दर्शन करते हैं, चलते हैं। तो बहुत से लोग घर से निकले, लेकिन भगवान ने परीक्षा ये लेनी थी कि इनको मेरा दर्शन करना मुख्य उद्देश्य है या ये कौतूहल आ रहे हैं, ये असल में मुझे पाने के लिए आए हैं या मुझसे कुछ पाने के लिए आ रहे हैं। तो रास्ते के अंदर आने वाले दोनों तरफ से, पहला तो एक जगह बहुत सुंदर अभिनेत्रियां, अभिनेता और गाने वाले गान कर रहे थे, आओ आओ मुफ्त में विश्व के बहुत प्रसिद्ध कलाकारों का गान सुनिए और बड़े अभिनेताओं का दर्शन कीजिए। लोग घर से 6 बजे तो निकले थे कि पहुंचेंगे 7 बजे, दूर नहीं है, एक मिनट देख तो ले अंदर कौन कौन है। वहां से 15 मिनट में किसी ने कहा चलो भाई भगवान के दर्शन का, बाहर निकले तो सुंदर भोजन का ऐसा व्यवस्था, आइए आइए सबके लिए फ्री में बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन, आज तो भंडारा चल रहा है, आइए आइए। अरे सबने कहा भगवान का दर्शन तो हो जाए, ऐसा सुंदर देखो गरम गरम कैसा मालपुड़ा निकल रहा है, पेड़ा बन रहा है, ये पकौड़ी ये कचौरी, अरे सब उधर लाइन में खड़े हो गए। अब बाकी 5-7 मिनट बचा, बोला जल्दी चलो जल्दी चलो, इधर बाहर इतनी भीड़ थी और उसमें ऐसा भीड़ के अंदर, अब अंदर जाने तो पहले भर गया, अंदर पहुंच नहीं पाए। तो भगवान तो सुलभ है मिलने ना, लेकिन रास्ते में हमारे को भगवान की माया का ऐसा विस्तार फैला हुआ है, वो हम जाके उसकी ओर आंख उठाते हैं तो वो अपने ऊपर ऐसे कहते आ जाओ, और हमको भगवान भूल जाता है, हम उस माया की गोद में चले जाते हैं। तो इससे क्या सिद्धांत स्थापित होता है कि जब तक हम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, ये दूसरे अध्याय का श्लोक है, जब तक हमारी बुद्धि एकाग्र भगवान को पाने के लिए दृढ़ निश्चय नहीं कर लेगी, तब तक रास्ते में माया का विलास इतना है, माया का प्रभाव इतना है और माया का विस्तार इतना है कि पग पग में माया जंजीर डाल देती है और आगे बढ़ने नहीं देती। और फिर कली काल में आजकल तो माया का प्रदर्शन चारों अंदर बहुत तीव्र गति से चल रहा है। तो माया से बचना है तो पहले दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा कि भगवान को पाना है। तो भगवान कहते हैं फिर भी कुछ ऐसे हैं जो मेरा शरण तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास आते हैं, उनको कुछ चाहिए। यह भी बड़ी बात है, कुछ मांगना भी है तो भगवान से मांगना चाहिए, ये बहुत विशेष बात है। इस दुनिया में देने वाला एक भगवान है, बाकी सब मांगने वाले हैं। एक भगवान देने वाला है, बाकी सब मांगने वाले हैं। कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता, किसी का कुछ है ही नहीं तो देगा कहां से। एक भगवान देने वाला है और सारा जगत लेने वाला है। भगवान एक दातार है, बाकी सारा संसार मांगता है। बरसात अपने समय के ऊपर बरसती है, लेकिन भगवान की कृपा 12 मास बरसती है। भाग्यशाली कोई उसको प्राप्त करना चाहिए, भगवान के दरवाजे खुले हैं। सो भगवान ने कहा, फिर भी कुछ बुद्धिमान है जो मेरे पास आते हैं, चाहे दुख में आए, चाहे धन के लिए आए, चाहे जानने कुछ जानकारी के लिए आए, या मेरे ज्ञान को प्राप्त करने लिए के लिए आए हैं। इन चारों में से जो ज्ञानी है वो मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि वो एक भक्तिर विशिष्यते और नित्य युक्ता, और मेरी सेवा में लगा हुआ है और एकाग्र चित्त होके भक्ति करने का उसने संकल्प कर लिया है। और दूसरे भी उधार हैं, लेकिन ज्ञानी तो मेरे समान मुझे प्रिय है। और ये कहकर भगवान ने पूछा, भाई ज्ञानी आपको कब पाएगा, कितनी देर में आपको ज्ञानी पहुंच जाएगा आपके पास। तब भगवान ने कहा, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। बहुत जन्मों के बाद ज्ञानी मेरा चरण पकड़ता है, शरण लेता है, तभी माया से छूटेगा, नहीं तो छूटेगा नहीं। अभी तक शरण नहीं लिया है, लेकिन प्रयास कर रहा है, सेवा कर रहा है, शरण नहीं लिया है। हम जो भक्ति में लगे हुए हैं, हमारा भी ऐसा ही हाल है, कुछ न कुछ अपनी इच्छाएं इधर उधर है, इसलिए पूरा शरण नहीं ले पाते हैं। थोड़ा सा काम करेंगे, थोड़ा सा शरण लेंगे, तो इसलिए बीच में लटकते हैं। तो बहु नाम जन्म नाम अंते, और भक्ति के लिए भगवान 12वें अध्याय में क्या कहेंगे, निचरात पारथ मयावेशित चेत सामृत संसार सागरात भवामी निचरात। अरे जिसका चित्त मेरे में आसक्त है, उसको तो मैं मृत्यु संसार से स्वयं आके तत्काल, समय नहीं लगाऊंगा, अभी का अभी निकाल लूंगा, बहुत जन्म नहीं लेने पड़ेंगे। ये ज्ञानी के और भक्त के मार्ग में अंतर है। ज्ञानी बहुत जन्मों के बाद मुझे वासुदेव समझेगा, ये महात्मा बनेगा कि मैं सर्वत्र हूं, लेकिन भक्त ने मुझ में चित्त आसक्त कर लिया, मैं चित्त, और उसको मृत्यु संसार सागरात, उसको मृत्यु संसार सागर से उधार, मैं ऊपर ऊपर से उठा लूंगा, पानी में भीगने ही नहीं दूंगा। भवामी निचरात, बहुत समय नहीं लगाऊंगा, चिरकाल नहीं लगाऊंगा, एकदम उठा के अपने धाम लेके चला जाऊंगा। भक्त को प्रयास नहीं करना पड़ेगा, मैं उसको लेने आ जाऊंगा, क्योंकि वो मेरा चिंतन कर रहा है, इसलिए मैं उसकी चिंता करता हूं। जो भगवान की सेवा में, भगवान के चिंतन में है, उसकी भगवान चिंता करते हैं। अर्जुन ऐसा भक्त है, भगवान के लिए धर्म का युद्ध कर रहा है, तो भगवान चिंता कर रहे हैं कि अर्जुन का भला कैसे हो, यह चिंता भगवान को, अर्जुन को नहीं है। भक्त भगवान की सेवा में लगे तो भगवान भक्त का योगक्षेमम वाहामियाम, उसकी आवश्यकताएं पूरी करते हैं, उसके पास जो है उसकी रक्षा करते हैं। तो इसके बाद भगवान ने, अब कितने विभाग हो गया, एक विभाग हो गया जो माया से बच ही नहीं सकते हैं, जिनको माया ने मोह लिया है, जो भगवान का शरण लेके भक्ति करना ही नहीं चाहते हैं, वो तो दुष्कृत हैं, उनके कार्य दुष्ट हैं, वो मूढ़े मूर्ख हैं, वो नराधम है, वो मायापहृत ज्ञान है, माया के द्वारा ज्ञान हर लिया गया है और आसुर भाव को प्राप्त हुए, ये तो छूटे। चार जो शुद्ध भक्त नहीं है, लेकिन थोड़ा सा भगवान के सेवा पूजा के लिए मंदिर तक आए हैं, लेकिन आए कुछ मांगने हैं, लेकिन मांगने आए हैं तो भगवान उनकी इच्छा पूरी करते करते उनके हृदय को पवित्र कर देंगे। वो भी भगवान उदार मानता है, बड़े ही उदार हैं, कम से कम मेरे पास तो आए हैं। अब दूसरा प्रसंग 4 श्लोकों में आता है कि जो मेरे पास तो आते नहीं हैं, लेकिन किसी अन्य के पास जाते हैं। काहे के लिए जाते हैं, कि उनको बहुत कामनाएं हैं। जैसे कभी कभी बच्चों की कोई ऐसी कामनाएं होती हैं कि सिगरेट पीना है, तो बाप के पास नहीं जाएंगे, पैसा बाप से नहीं मांगेंगे सिगरेट के लिए। बच्चे को शराब पीना है, सिगरेट पीना है, ऐसी कोई कामनाएं हैं तो वो बाप के पास माँ के पास नहीं जाएंगे, वो बाहर किसी और से उसकी व्यवस्था कर लेते हैं। यहां कामनाओं का अर्थ है वो कामनाएं जो भगवान से मांगने में लज्जा आती है। वो कहां जाके मांगते हैं ये चार श्लोकों में भगवान के पास न जाकर भगवान के नियुक्त प्रतिनिधि देवताओं के पास जाते हैं। और ये भगवान ने वेदों में वर्णन भी किया है, अगर आरोग्य चाहिए, स्वस्थ चाहिए, सूर्य की उपासना करो, विद्या चाहिए, सरस्वती की उपासना करो, अच्छी पत्नी चाहिए तो दुर्गा की उपासना करो, शंकर के मंदिर में जाओ। तो ये विधान बना रखा है वेद में, लेकिन ये सारी भौतिक इच्छाएं हैं। लेकिन उसमें भी होशियारी सावधानी होनी चाहिए। अब कोई हनुमान जी के मंदिर में जाए और कहे हे बजरंगबली ब्रह्मचारी दे दे मेरे को एक नारी, अरे हनुमान कहता है मैं अपने लिए नहीं लाया, तुम्हारे कहां से लाऊंगा, यहां कहां तुम मांगने आ गए। फिर हनुमान कहता है देखो तुम्हारी कोई भगा के गया हो तो बोलो, मैं पता करा के दे तू, ये तो काम मैंने किया है पहले, भगवान की ही को मां सीता को ले गया था रावण, मैं पता करके आ गया, बाकी विवाह का मेरे पास मत कहो, कहीं कुछ परेशानी हो दूसरी तो मेरे को बताना, लाके दूंगा। अब शंकर जी के पास जाए, भोलेनाथ हमारा बंगला बना दो। हंगे शंकर जी हंसते, अरे मूर्ख मैं अपना घर नहीं बनाया, तेरा कहां से बनाऊंगा, मैं पेड़ के नीचे बैठा हूं और तू मेरे पास आया कि घर बना दो। भाई जहां तुम्हारा काम हो वहां जाओ ना, मेरे पास आना है तो भगवान के बारे में पूछो तो मैं सिखाऊं, मैं परम वैष्णव हूं और मैं भक्तों को भगवान से मिलाने का कार्य करता हूं, तू घर मांग रहा, अरे घर तेरे भाग्य में वैसे भी है तो मिलेगा, कि जो जो बहुत से मांगते नहीं है उनको भी मिल जाता है, इसमें क्या। हाँ सुत दारा लक्ष्मी पापी को भी होए, ये बच्चे हैं, ये धन है, ये तो पापियों को भी नास्तिकों को ही मिल रही है, इसमें क्या चीज भगवान से मांगने की है। भगवान से मांगना है तो भगवान को ही मांग लेना चाहिए ना। और अर्जुन इस चीज का उदाहरण है, जरूरत तो लड़ाई की थी, सेना की जरूरत थी, लेकिन द्वारका जब गए तो दुर्योधन उनसे पहले भगवान के पास बैठे थे और भगवान ने अर्जुन को, अर्जुन चरणों के पास बैठे और दुर्योधन संबंधी था, भगवान का बेटे सांबा का शादी दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा के साथ हुआ है और बलराम जी ये शादी जबरदस्ती करा के आए हैं, तो वो तो संबंधी था, वो तो अपना सोफा भगवान के सर के पास रख के बैठा था, लेकिन अर्जुन भगवान का बहनोई है, सुभद्रा से कैसे विवाह हुआ है अर्जुन का, लेकिन बैठा भगवान के चरणों में था क्योंकि भगवान का भक्त है। भगवान ने पहले अर्जुन के ऊपर नजर पड़ी, अरे पार्थ आप कैसे पधारे, तब तो दुर्योधन कहते मैं पहले आया हूं द्वारकाधीश और युद्ध अनिवार्य है, मैं सेवा आपसे सहायता मांगने के लिए आया हूं। अर्जुन ने कहा युधिष्ठिर महाराज ने मुझे भी सहायता के लिए भेजा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा आप दोनों मेरे संबंधी हो, एक तरफ तो मैं अपनी एक अक्षौणी सेना देता हूं, कृतवर्मा सेनापति देता हूं, एक तरफ मैं अकेला रहूंगा, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, अब अर्जुन छोटा है पहले मैंने देखा उसको है, अर्जुन को चुन लेने दो। दुर्योधन बड़ा दुखी हो गया कि अभी लड़ाई के लिए सेना ये ले जाएगा, मैं इस ग्वाले को अस्त्र शस्त्र नहीं है क्या करूंगा ले जाकर। लेकिन अर्जुन ने बिल्कुल नहीं सोचा, ये अर्जुन की पहली शरणागति है, उसने कहा श्री कृष्ण मैं आपको ले लेता हूं। अर्जुन ने कहा महाराज युधिष्ठिर कहेगा तुम मूर्खता तो नहीं कर रहा है, लड़ाई के लिए सेना चाहिए मेरे को क्या करेगा। अर्जुन कहते हैं सेना क्या, मैं अकेला युद्ध के लिए मैं अकेला आपकी कृपा से समर्थ हूं, लेकिन आप जैसा सारथी होगा तो मैं हमारा सर्व कल्याण हो जाएगा। वो भगवान सारथी का मतलब ये होता है जो रथ को सही रास्ते पे चलाए, अर्जुन का भगवान सारथी बने हैं, वो श्री कृष्ण हम सबके सारथी बनने को तैयार है। ये शरीर हमारा रथ है, इंद्रियां इसके घोड़े हैं, मन इसका लगाम है, बुद्धि इस शरीर में सारथी है और हम स्वयं आत्मा इसमें यात्री हैं। और ये भव सागर में हमें भारी संग्राम करना है, इंद्रियों के विषयों से जूझना है, आदि भौतिक आदि देविक आध्यात्मिक कलेशों से लड़ना है। इसके लिए हमें अपनी बुद्धि में अच्छा सारथी बिठाना चाहिए और हमारे मन रूपी इंद्रियों का संयम का लगाम श्री कृष्ण के हाथ में देना चाहिए। यही तो भगवद गीता का संदेश है। भगवान यही दो बातें कहते हैं, तेरा मन मेरे हाथ में दे दो, तेरी बुद्धि में मुझे बिठा दो। इसका मतलब मुझे सारथी बना लो तेरा, और मैं तेरे भी इस शरीर रूपी रथ का सारथी बना के तेरे को भव सागर से पार ले जाऊंगा, तेरे को संसार की सारी समस्याओं से सुरक्षित अपने धाम तक ले जाऊंगा। बस तुम अपना मन मेरे हवाले कर दो और बुद्धि में मुझे निवास कराओ। इसलिए बुद्धि को कौन ऐसा है जिसने भगवान को अपना मन दिया, कौन ऐसा है जिसने भगवान को अपनी बुद्धि दी? तो उद्धव कहता है गोपियों को, तुम मन भगवान में लगाओ। बोला मन तो पहले ही कृष्ण ले गया, दूसरा कहां से लाए? तो मन भगवान को देने वालों का उदाहरण है गोपियां। मन मनस का, मन उनका मुझ में आ सकता है, उन्होंने मन मेरे को ही दे दिया है। वो मेरी इच्छा के अनुसार उनका मन काम करता है, उनका मन स्वतंत्र नहीं है। और भीष्म पितामह ऐसा भागवत है, भगवान को कहते हैं ये मेरी बुद्धि ये मेरी मति है, इसको आप स्वीकार कर लो। इति मति उपकल्पिता वित्रषणा भूमना। हे भगवान, हे भूमना, हे महान, मेरी ये मति जिसने आपका वर्ण कर लिया है, आपको पसंद कर लिया है, आप इसको स्वीकार कर लो। भाव क्या है? ये बुद्धि या तो पुरंजन की तरह पत्नी बना लो, बार बार संसार में जन्म मृत्यु के चक्कर में आते रहो। पुरंजन आत्मा ने बुद्धि को पत्नी बना के इस शरीर रूपी पुर में रंजन करना शुरू किया, चौथे स्कंद भागवत में इसको पुरंजन कहते। और हम सब मूर्खता से बुद्धि के पति बनते और इस शरीर में भोग करना चाहते हैं, लेकिन ये बुद्धि सती मती कब होगी? जब ये भगवान का वर्ण करेगी। यही तो गायत्री मंत्र में हम कहते हैं, धीमहि वरेण्यम धीमहि वरेण्यम। ये बुद्धि वरण करे किसका? बुद्धि धी मही, ये मेरी बुद्धि, भगवान आपका वरण करे। आप वर हैं और ये बुद्धि आपकी, बुद्धि आपकी वधु बन जाए। और कभी कभी भीष्म पितामह जैसा महात्मा कहता है कि ये मेरी कुंवारी कन्या तो है बुद्धि, इसको मैंने दुनिया में भटकने नहीं दिया है, लेकिन मैं ब्रह्मचारी हूं, मेरे को पुत्र नहीं है भगवान। और जिसको पुत्र नहीं होता है उसके मन का भाव होता है कि ये मेरा जमाई मेरे घर में ही रहे। तो हे श्री कृष्ण, मेरी इस बुद्धि को आप ग्रहण करो और मेरे ही बुद्धि में आप आके रहो, मेरी दिल में आप आके रहो। ये भीष्म का भाव है कि भगवान आप मेरे हृदय में आके विराजमान करो। इस बुद्धि को क्या कहते हैं? सती मती। ये सती मती है, ये बुद्धि ने भगवान का वर्ण किया है, ये सती मती है। बुद्धि भगवान को उसमें विराजमान करने की स्थान है, भगवान सारथी बुद्धि का स्थान है। सो अर्जुन भगवान को वर्ण करके आया, ये अर्जुन की पहली शरणागति है। भगवान को मांगने वालों की महिमा है, भगवान से मांगने वालों की महिमा नहीं है। दुर्योधन भगवान की सेना लेके आया, सब कुछ समाप्त हो गया, कुछ भी नहीं रहा। अर्जुन एक कृष्ण को लाया, तो आज भी कृष्ण के नाम साथ अर्जुन का नाम अमर हो गया। तो भगवान को मांगने वाले महान हैं। जो भगवान को नहीं मांगते हैं और भगवान से भी नहीं मांगते हैं वो कहां जाते हैं? बोला अन्य देवता, वो अन्य देवताओं के पास जाते हैं। ये चार श्लोक हम आज पहले पढ़ते हैं। कामेष्टे हृतक, ये सुबह सत्संग में हो भी चुके हैं लेकिन फिर भी आप में से कुछ महानुभाव सुबह अपने कृत्य के कारण नहीं आ सकते हैं तो हम बहुत जल्दी में इसको पूरा करते हैं। कामेष्टे तेहृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियम आस्थाय प्रकृति नेहता सोया। कामनाओं के गुलाम बनकर, इच्छाओं के दास बनकर दूसरे मेरा शरण न लेकर देवताओं का पांव पकड़ते हैं और उसी देवता की पूजा के नियमों का पालन करते हैं। बोला क्यों करते हैं? बोला उनका स्वभाव ऐसा है। तो क्या कौन से स्वभाव के लोग देवताओं की पूजा करते हैं? प्रायः देवताओं के पूजा करने वाले क्योंकि इच्छा रखते हैं और इच्छाएं जहां उत्पन्न होती है वो रजोगुण होता है। रजोगुण के स्वभाव वाले प्रायः कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, ये कामनाएं रजोगुण से उत्पन्न होती है। भगवत गीता में बार बार एक बात कही गई है कि तमोगुण और रजोगुण से बचो, ऊपर उठ के आ जाओ, कम से कम सतोगुण में आओ। और सतोगुण में जो होते हैं वो प्रायः भगवान की नक जाकर देवताओं की पूजा प्रायः करते हैं और देवता सतोगुण में प्रायः रहते हैं। अब वो पूजा करना चाहते हैं देवता की, अब भगवान आगे क्या कह रहे हैं ये सुन लीजिए। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धया रिचतम इच्छति तस्य तस्य चलाम श्रद्धाम माताम एव विदधामि अहम्। जो जो जिस जिस देवता की पूजा करना चाहता है और जो उसको श्रद्धा चाहिए पूजा के लिए, वो श्रद्धा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं परमात्मा के रूप में उसके हृदय में बैठा हूं और देखता हूं कि ये मेरे पास नहीं आता है, मेरे अंग देवता के पास जा रहा है, जो मेरे विराट स्वरूप में एक अंग है उसके पास जा रहा है तो श्रद्धा मैं देता हूं। उस देवता की पूजा करने वाले को श्रद्धा मैं देता हूं और फिर क्या करता है वो? फिर वो सत्या श्रद्धया युक्तो तस्य आराधनम इहते। उस श्रद्धा से जो मैं देता हूं श्री कृष्ण कहते हैं वो उस देवता की पूजा करता है, आराधना करता है। लभते च ततः कामान, उसको वो सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। देवता उसके मन वांछित फल देता है तब कहते हैं मय्येव व्यतानीतान, और वो सारे फल देवताओं को मैं कहता हूं कि इनको दे दो तब वो देते हैं। ये भगवान के परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में बैठे हुए हमारे मन के भाव को जानते हैं, हमारे स्वभाव को जानते हैं कि हम किसी देवता से कोई सांसारिक फल मांग रहे हैं तो हमारी श्रद्धा को दृढ़ करते हैं। क्योंकि कम से कम हमारे को वेद के दायरे में रखना चाहते हैं, हमको धर्म के दायरे में रखना चाहते हैं। और देवता के हृदय में भी परमात्मा के रूप में भगवान रहते हैं और देवता को भगवान के रूप में परमात्मा कहते हैं ये तुम्हारी पूजा इस ये मांग रहा है। और देवता को मालूम है कि सब चीजों का स्वामी भगवान है, हम भले भूल जाएं लेकिन देवता कभी नहीं भूलते हैं। तो देवता भगवान की अनुमति से उस अब देवता के भक्त की इच्छा पूरी करता है। श्रद्धा भी भगवान ने दी, फल भी भगवान ने दिलाया, फिर भी देवता की और भगवान की पूजा में अंतर क्या है? और भगवान अपनी ही पूजा क्यों नहीं कराते हैं? देवता की क्यों कराते हैं? इसका उत्तर है कि मानव जन्म में हमारे को स्वतंत्रता है, हम किसी की भी पूजा करें, और भगवान हमारी इस छोटी सी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। हम चाहते हैं इसकी पूजा करेंगे, भगवान कहेंगे आपकी इच्छा, लेकिन मेरा आदेश मेरी पूजा करने का है, लेकिन तुम्हारी स्वतंत्रता से तुम किसी अन्य की पूजा करना चाहते हो, आपको अनुमति है, क्योंकि भगवान हमारी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते। अब देवता की पूजा और भगवान की पूजा एक ही चीज के लिए की जाए तो अंतर क्या है? अंतर यह मुख्य है कि भगवान के पास कुछ मांगने जाएंगे तो भगवान मांग देने से पहले देखेगा कि उसमें हमारा लाभ है कि नहीं, अगर लाभ नहीं है तो नहीं देगा, और लाभ है तो देगा, और अगर देना भी है तो देने के प्रक्रिया में हमारे हृदय को शुद्ध कर देगा, हमारे अंदर में भोग की कामना ही खत्म हो जाएगी और भगवान की सेवा का भाव उत्पन्न कर देंगी भगवान। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये मूर्ख अमृत छाड़ी विष मांगे। भगवान कहते मेरे पास आए और मैं अमृत दे रहा हूं, उसको छोड़ के विष मांग रहा है, विषयों का भोग विषय वो मांग रहा है, ये बड़ो मूर्ख, ये तो मूर्ख है, हम ही विज्ञ। भगवान कहते मैं तो जानता हूं ना, मैं मूर्ख को विष कैसे दूंगा, मेरे पास आया है, मैं तो उसको जबरदस्ती अमृत पिलाता हूं। हम सामान्य उदाहरण समझाने के लिए देते हैं, दिसंबर जनवरी का महीना हो, बहुत सर्दी हो, छोटा बच्चा आपका 5 वर्ष का हो, उसको सर्दी जुकाम हो, नाक बहरा हो, खांसी हो, लेकिन 100 रुपये का नोट ले जाके किसी भी आइसक्रीम पार्लर वाले को कहे मुझे आइसक्रीम दे दो, देगा कि नहीं देगा? हाँ, देगा कि नहीं देगा? दे देगा। वो थोड़ी ये सोचेगा कि इसको खांसी हो रही है, इसका नाक बह रहा है, ये आइसक्रीम ठंडी खाएगा और ये बच्चा है बीमार हो जाएगा, ये चिंता होगी उसको? होती क्या? दुकानदार को नहीं होगी। और वो बच्चा अगर अपने बाप को कहे कि मुझे आइसक्रीम खिलाओ तो बाप कहेगा नहीं, अभी तो तुम्हारे को दवाई पिलानी पड़ेगी, अभी तो ये गोली खाओ, आइसक्रीम बंद। तो कौन हितेशी भाव कौन है बच्चे का? दुकानदार जो 100 रुपये की आइसक्रीम देता है, या बाप जो दवाई देता है आइसक्रीम नहीं खिलाता है? बाप भला चाहता है बच्चे का, ये बाप जब मई जून आएगा तो आइसक्रीम बड़ा कार्टून लाके दे देगा बेटे को, लेकिन जब वो उसके हित में नहीं है तब नहीं देगा। तो देवता जो मांगोगे वो दे देंगे, उससे आपका लाभ हो हानि हो ये आप जिम्मेवार हो, लेकिन भगवान वही देंगे जिससे आपका लाभ हो, क्योंकि वो पिता है। और भगवान जैसे महाप्रभु कहते हैं मैं कैसे इनको विष दूं, ये तो मूर्ख मांग रहे हैं, लेकिन मैं तो अमृत ही दूंगा, क्योंकि मैं तो अमृत का दाता हूं। ये भागवत में वृकासुर की कथा आती है, 10वें स्कंद में। वृकासुर ने भगवान शंकर को आशुतोष समझ के जाके कहा, भगवान का तपस्या करके कहा, भगवान मेरे को आशीर्वाद दो। अच्छा जी, तुम तथा अस्तु, क्या चाहिए? बोला मैं जिसके सर के ऊपर हाथ रखूं उसका सर फट जाए। और शंकर जी ने कह दिया तथा अस्तु, और पास में गौरी खड़ी थी, और शंकर जी के पास में खड़ी है पार्वती, और उस असुर का हृदय में नियत खराब हो गई, कहा कि ये गौरी कितनी सुंदर है, इसको मेरा भोगने का मन कर रहा है, अब क्या करना चाहिए? शंकर के सर के ऊपर हाथ रखता हूं जिसने वरदान दिया, और भगवान भोलेनाथ के सर के ऊपर हाथ लगने रखने के लिए वृकासुर दौड़ा और शंकर जी भागे, और भगवान विष्णु ने ये देखा कि ये तो परम उधार वैष्णव आशुतोष ने इस मूर्ख को वरदान तो दे दिया है लेकिन संकट में पड़ गए हैं, भगवान ने कहा भोलेनाथ कैलाशपति कहाँ जा रहे हैं? बोला वीरकासुर पीछे आ रहा है। बोला आप पीछे जाके बैठ जाइए। भगवान ब्राह्मण बन के कहते कहाँ जा रहे हो वीरकासुर जी महाराज? बोला भोलेनाथ के पीछे जा रहा हूँ, सर के ऊपर हाथ रखूंगा। क्यों? उन्होंने मुझे वरदान दिया है जिसके सर के ऊपर हाथ रखूंगा उसका सर फट जाएगा। हंसते हुए भगवान कहते हैं तू भोले हो बिल्कुल, तुमको जो पता नहीं है वो दक्ष ने जब से शराप दिया है ना, शंकर जी का कोई वरदान काम नहीं करता है। ऐसे कह दिया होगा बाबा ने, तुम्हें विश्वास नहीं आता है तो अपने सर के ऊपर हाथ रख दे, कुछ भी नहीं होगा, आपको अभी पता लग जाएगा। वो मूर्ख ने अपने सर के ऊपर हाथ रखा और वहीं उफट मर गया। और मर गया तब शंकर जी पीछे से देख रहे थे। भगवान ने कहा ऐसा वरदान मत दिया करो कि आपको ही भगना पड़े। और ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया हिरण्यकशिपु को, और फिर हिरण्यकशिपु से सब संसार परेशान। अब करें क्या? वो भगवान तो नरसिंह देव रूप बन के आए, हिरण्यकश का उद्धार तो किया। ब्रह्मा जी को कहा हे चतुर्मुख सारा वेद जानता है, ऐसा तो कभी वरदान दोबारा नहीं देना कि आधा शेर और आधा आदमी बन के आना पड़े और मेरी पत्नी लक्ष्मी दूर से डर के भाग जाए, ऐसा वरदान दोबारा मत देना, जरा सावधान होना। ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दे दिए और यज्ञशाला में सारे देवता कहते हैं बे ब्रह्मा जी ये कुंभकर्ण और रावण ने पूरे संसार में त्राही त्राही मचा दी है, आपके वरदान से हमारी जान कैसे छूटेगी? तब भगवान विष्णु प्रकट होके कहते हैं आप लोग तो यज्ञ का भाग लो, लेकिन मैं आपके हित के लिए दशरथ के घर में इसी यज्ञ में उनके पुत्र के रूप में प्रकट होके आपकी समस्या का समाधान करूंगा। वो मूर्ख ने सब कुछ मांगा है लेकिन मानव और वानर से मरने का उसको कोई भय नहीं है, तो मैं तो मानव अवतार में वानरों के साथ उसका सत्यानाश कर लूंगा, आप आराम से यज्ञ का भाग लेके मौज करो खाओ। तो देवताओं के वरदान देने में वो हमारे को पहले तो स्वतंत्र नहीं है, भगवान जब कहेगा तभी देंगे नहीं तो नहीं देंगे। और दूसरा आगे वाला श्लोक कहता है अंतवंतु फलम तेषाम तद्भवत्य अल्पमेधसाम देवान देव यजो यान्ति मदभक्त यान्ति मामपि। अंतवंतु फलम तेषाम, उन देवताओं के दिए हुए फल अंतवंत नाशवंत है, क्योंकि देवताओं का अपना भी लोक और देवताओं का अपना पद भी समय समय के ऊपर बदलता रहता है। एक मनवंतर जब बदलता है, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं और हर मनवंतर में इंद्र नया चुना जाता है, हर मनवंतर में 7 ऋषि नए चुने जाते हैं, देवताओं में भी परिवर्तन होता रहता है। तो जो देवता स्वयं अमर नहीं है, जो स्वयं नित्य नहीं है, वो आपको ऐसा फल कहां से देंगे जो सदा आपके साथ रहे? अंतवंतु फलम तेषाम, और फिर ऐसे फल मांगने वालों के लिए भगवान ने कहा अल्प मेध साम। अल्प का मतलब थोड़ा, मेधा का मतलब बुद्धि। कम बुद्धि वालों ने, बुद्धि कम क्यों है? बोला माया, क्यों काम ने हर ली है बुद्धि। हाँ, काम जो पहला श्लोक है कामेष्टे हृत ज्ञाना, उनका ज्ञान हरण लिया है इसलिए उनकी बुद्धि कम बुद्धि वाले तुच्छ देवताओं से फल लेते हैं जो तुरंत समाप्त हो जाते हैं। कभी हम पूछते हैं सामान्य लोगों से जो प्रेम से देवताओं की पूजा करते हैं, जब भगवान ही मना नहीं करता है श्रद्धा देता है तो हमको भी आश्चर्य अच्छा लगता है। हम पूछते हैं बहुत अच्छा, इतनी सारी देवी दुर्गा की उपासना कर रहे हो भाई, भले करो, भगवान ने इसको वरदान दिया है दशम स्कंद में कि हे देवी तू बलराम जी को देवकी के उधर से रोहिणी के उधर में स्थापित करोगी और मेरी छोटी बहन बन के यशोदा के घर में प्रकट होगी, तो तेरी विंध्या में बहुत विंध्याचल पर्वत में वैष्णवी के नाम से पूजा होगी, कल युग में तुम्हारी लोग पूजा करेंगे, ये तो ठीक है, लेकिन पूजा करने काहे के लिए चाहिए? हम तो हाथ जोड़ के कहते हैं भाई देवी के पास जाओ, उनकी पूजा करो, तो वो है संसार पूरे जगत की अधिष्ठात्री देवी, जगत की मालिक वो है, इस दुनिया की भौतिक जगत की वो जेल सुपरिटेंडेंट है, और हम सब इस जगत की जेल में पड़े हैं, तो उसकी पूजा करो। तो हमको क्या मांगना चाहिए? एक व्यक्ति जेल में है, जेल सुपरिटेंडेंट उससे बहुत प्रसन्न है, तो उससे क्या मांगना चाहिए? जेल में सुविधा मांगनी चाहिए या जेल से बाहर नंगे निकलने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए? हमको जेल में एयर कंडीशन लगा दो, हमको जेल में मोबाइल की फैसिलिटी दे दो, हमारे को जेल में खाना घर से आए ये व्यवस्था कर दो, ये मांगना ठीक है या जेल से निकाल दो ये मांगना ठीक है? क्या राय है आपकी? हाँ जी, जेल से निकाल दो ये मांगने वाला बुद्धिमान है, लेकिन प्रायः सब पूजा करने जाते हैं, जेल में फैसिलिटी मांग रहे हैं। इस दुनिया में हमारे को घर दे दो, पुत्र दे दो, धन दे दो, यहीं हम रहेंगे, फैसिलिटी हमको अच्छी दे दो, तो ये बुद्धिमान नहीं हुए ना, कम बुद्धिमान हुए ना, जेल से निकलने के लिए तो नहीं मांगा, जेल में ही फैसिलिटी मांग रहे हैं, तो इनको कहा कम बुद्धि वाले। और आगे की लाइन में भगवान क्या कहते हैं? आगे की लाइन में भगवान कहते हैं देवान देव यजो यान्ति, जो देवता की पूजा करेगा देवता के पास जाएगा, और कहते हैं माम मद भक्ता, और मेरे भक्त यान्ति माम अपि, वो तो मेरे पास आएंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ, पहले तो देवता भी व्यक्ति हैं, उनको भी अपना लोक है, और भागवत में तो ये लिखा है सूर्य का लोक अपना, सूर्य का लोक यहाँ है, चंद्रमा का लोक यहाँ है, इंद्र का लोक यहाँ है, वरुण का लोक यहाँ है, वो मंदरा जो पर्वत है उसके दिशाओं में सब उसका वर्णन है, तो व्यक्ति है देवता और उनको अपना लोक है, ऐसे भगवान भी व्यक्ति है, उसको अपना लोक है वैकुंठ, उसको अपना लोक है गोलोक धाम। तो ये कैसे कह सकते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है? अरे रूप कैसे, वो तो नाम लेके के तनुम शरीर है, और वो लोक है उनका, उनकी अपनी पहचान है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। तो मेरा भक्त मेरे पास आएगा, ये नवे स्कंद अध्याय में फिर भी आएगा, पता नहीं हम वहां तक कर्त कथा में आ जाए कि नहीं आए, अभी बता देते हैं आपको। पूजा हम करते हैं, पूजा भगवान के पास जाती है, फल भगवान देते हैं, लेकिन हम देवता के पास जाते हैं, जिस देवता की पूजा करेंगे उसके पास जाएंगे, तो पूजा भगवान के पास कैसे पहुंचेगी? ये आगे नवे अध्याय में आएगा। और हम भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान के पास जाएंगे। रेलवे स्टेशन पे आप टिकट लेने जाते हैं ना, आप कहो कि मुझे कोलकाता का टिकट दो, तो पैसे कहां जाएंगे? सरकार में। और आप कहां जाओगे कलकत्ता? आप कहो कि मुझे यहां से बंबई का टिकट दो, तो आप जाओगे बंबई, लेकिन पैसा जाएगा रेलवे गवर्नमेंट में। तो गवर्नमेंट है भगवान, पूजा जाएगी भगवान के पास, लेकिन आप जिसका नाम लेके पूजा कर रहे हो आप वहां जाओगे। जैसे ट्रेन में आप पैसा देते हैं तो सरकार में नहीं जाते हैं, आप बंबई जाते हैं, आप कलकत्ते जाते हैं, आप दिल्ली जाते हैं, लेकिन पैसा सरकार के पास जाता है। तो पूजा भगवान के पास जाती है, लेकिन देवता का भक्त देवता के पास जाता है, भगवान का भक्त भगवान के पास जाता है। अब आगे ये तो हुई कम बुद्धि वालों की बात, अब बिना बुद्धि वालों का भी समाचार सुन लीजिए। अब आगे एक प्रसंग और आता है, अव्यक्तम व्यक्तम आपनम मन्यते माम अबुद्ध्य परम भावम अजानंतो मम अव्ययम ऐश्वर अनुत्तमम। अव्यक्त का मतलब व्यक्ति नहीं है, व्यक्तम आपन मुझसे व्यक्ति हो गया। ये लोग मूर्ख कैसे लोग हैं, अबुद्ध, जिनको बुद्धि है ही नहीं। देवता की पूजा वाले थोड़ी तो बुद्धि है, अल्प मेध सा है, और ये मूर्ख अबुद्ध, कोई बुद्धि नहीं है, बुद्धिहीन है। कौन? जो कहते हैं पहले भगवान निराकार था और अभी साकार होकर धरती पे आया है, इसका शरीर हमारे जैसा माया का बना हुआ है, ये कैसे लोग हैं? बोला अबुद्ध, इनको बुद्धि नहीं है, इनको बुद्धि नहीं है। परम भावम अजानंता, मेरे परम भाव को नहीं जानते हैं। भगवान आपका परम भाव कैसा है? बोला माम अव्ययम, मैं अविनाशी हूं, मेरा शरीर परिवर्तन नहीं होता। पहले भगवान कह के आए हैं कि मैं जानता हूं भूत में भविष्य में। तो जो व्यक्ति शरीर बदलेगा वो तो सब कुछ भूल जाएगा। चौथे अध्याय में भगवान ने कहा मैंने सूर्य को ज्ञान दिया, अर्जुन मुझे सब याद है, तुम्हें याद नहीं है। तुम्हें इसलिए याद नहीं है क्योंकि तुम शरीर बदलते हो, और मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैं उसी शरीर सच्चिदानंद में रहता हूं। तो भगवान को शरीर पहले नहीं था और अब भगवान ने शरीर लिया है, और भगवान के ऊपर माया का शरीर है, तो फिर भगवान कैसे हुआ जिससे माया शक्तिशाली है, और अपने माया जिसके ऊपर प्रभारी पड़ जाए वो भगवान कैसे हो गया? तो ये तथ्य मानने वालों की बुद्धि बिल्कुल नहीं है। चाहे वो वेदांत के ऊपर बैठ के भाषण करें, लेकिन अगर कहते हैं भगवान पहले निराकार था और अब आकार हो गया, तो भगवान कहते हैं बिल्कुल बुद्धि रहित है। मैं मेरे अविनाशी भाव को अनुत्तमम, प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाव से तो होता है तम, अंधकार अज्ञान, और मैं हूं अनुत्तमम, मैं अंधकार से परे परिपूर्ण ज्ञान स्वरूप हूं। ये मेरे परम भाव को नहीं जानते हैं, ये समझते हैं कि आपको मैं एक थोड़ी से, जिसको थोड़ी बुद्धि है वो भी समझ सकता है। यहां ये सामने फोटो लगा हुआ है जगन्नाथ जी का, इसको आप बड़ा करते जाओ बड़ा करते जाओ बड़ा करते जाओ, एक समय आएगा तो कुछ भी नहीं दिखेगा। तो छोटे रूप को बड़ा कितना भी करो, तो बड़ा करने के बाद उसका रूप चला जाएगा, निराकार हो जाएगा। लेकिन ऐसे ही आकाश में फोटो निकाल के उसको छोटा करेगा तो कोई मूर्ति बनेगी क्या जगन्नाथ की? निराकार से आकार नहीं हो सकता है, आकार वाले से निराकार हो सकता है। वैसे भगवान निराकार भी है, आकार दोनों है। भगवान निराकार है अपने शक्ति के माध्यम से, जैसे गवर्नमेंट निराकार है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट का प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट ये तो व्यक्ति है ना। गवर्नमेंट निराकार है, अव्यक्त है, लेकिन गवर्नमेंट का अधिपति व्यक्ति है, वो प्राइम मिनिस्टर है, वो प्रेसिडेंट है। ऐसे भगवान व्यक्ति है, लेकिन भगवान की शक्तियां जो इस सारे संसार का संचालन चलाती है वो निराकार है, अव्यक्त है। और अनुत्तम का अर्थ है भगवान निर्गुण है, तीनों गुणों से परे हैं। लेकिन भगवान निर्गुण का अर्थ ये नहीं है कि उनके अंदर, वो तो अनंत गुण आलय है, वो करुणा का गुण है, भक्त वत्सलता का गुण है, मधुरता का गुण है, सुंदरता का गुण है, दिव्य गुणों से परिपूर्ण है, लेकिन भौतिक प्रकृति के गुणों से परे है। इसलिए बिल्कुल जिनको बुद्धि नहीं है वो भगवान को कहते हैं पहले निराकार था अब आकार में आ गया है और इसका आकार माया का है, वो मेरे अविनाशी भाव को नहीं जानते हैं, मेरे अजन्मा भाव को नहीं जानते हैं। आगे भगवान कहते हैं अवजानन्ति माम मूढ़ा, ये तो बिल्कुल मूर्ख है, नहीं जानते हैं मुझे। मानुषम तनुम आश्रितम, वो समझते हैं कि मैंने मानव जैसा शरीर लिया है, अरे मेरा तो ये द्विभुज आकार नित्य शाश्वत है, गोलोक धाम में मैं तो श्याम सुंदर द्विभुज रूप में बांसुरी बजाता रहता हूँ, ये मेरा नित्य शाश्वत आकार है, ये नहीं जानते हैं। वो समझते हैं कि मैं इन जैसा एक इंसान हूं, इसलिए अब जानन्ति माम मूढ़ा मनुषम तनुम आश्रितम परम भावम अजानन्तो, उधर भी परम भावम अजानन्तो है, इधर भी परम भावम अजानन्तो है, परम भावम अजानन्तो, वो भी मेरे परम भाव को नहीं जानते, वो मूर्ख हैं, नहीं जानते हैं। अब भगवान आगे कहते हैं वो क्यों नहीं जानते हैं, तब कहते हैं पढ़िए आगे, नाहम प्रकाशति सर्वसः योग माया समावृतः मूढ़ो यम नाभिजानाति लोको मामजम अव्ययम्। नाम प्रकाशति सर्वस्य, सबके सामने मैं प्रकाशित नहीं होता हूं। तो भगवान क्या करते हैं, बोला मैं घूंघट में रहता हूं, योग माया ढक के रहता हूं। अरे भगवान श्री कृष्ण 5200 साल पहले इस धरती के ऊपर घूमे थे, तभी भी बताओ कि कौरवों की सभा में गए थे, कौन उसको पहचान पाया, दुर्योधन तो कह रहा था इसको बांध दो, कौरव सभा में सवाय भीष्म पिता में द्रोणाचार्य के और पांडवों के अलावा भगवान की भगवता को कोई भी नहीं जान पाया। क्यों नहीं जान पाया, क्योंकि भगवान हमेशा अपनी योग माया से अपने आप को ढक के रखते हैं, जिसके ऊपर कृपा करते हैं उनको घूंघट उठा के अपना मुख दिखाते हैं, नहीं तो भगवान घूंघट में रहते हैं। योग माया भगवान अपने अपने आप को, और क्यों कोई क्यों भगवान अपने आप को छुपा के रखते हैं, बड़ी करुणा करते हैं, क्योंकि ये मूर्ख अवज्ञा कर देंगे भगवान की और बड़ा पाप हो जाएगा उनसे। हमसे अपराध न हो, मूर्खों को अपराध से बचाने के लिए भगवान अपने आप को योग माया से ढक के रखते हैं, अपने आप को ढक के रखते हैं, इसलिए मूर्ख भगवान को नहीं जानते हैं। मूढ़ो अयम ना भी जाना थी, ऐसे मेरे को मूर्ख नहीं जानते हैं। लोक इस लोक में जब मैं अवतार लेता हूं, क्या नहीं जानते हैं मेरे बारे में, अजम मैं अजन्मा हूं, मैं अविनाशी हूं, ये नहीं जानते, मैं अजन्मा हूं, अजोपि सन्नव्य आत्मा, मैं अजन्मा हूं, मैं अपने उसी शरीर में प्रकट होता हूं, मेरे योग माया से प्रकट होता हूं, मेरे ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं होता है। तो भगवान ये लोग आपको नहीं देखते हैं, आपको पर्दा है, आप इनको देख सकते हो क्या, या पर्दा लगा देंगे तो आप मुझे नहीं देखेंगे क्या, मैं आपको देख सकता हूं क्या। तो भगवान आपको ये लोग नहीं देख सकते, आप इनको देख सकते हैं, कहते हैं हां मैं देख सकता हूं। तो ये श्लोक पढ़े, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चना। वेदाहम मैं जानता हूं, मैं सबको देख रहा हूं, मैं जानता हूं, समितितानि ये सब कुछ मैं देखता हूं, पूरे का पूरा जो पहले अतीत में गया वो भी देखता हूं, वर्तमानामि जो वो वर्तमान में चल रहा है उसको भी देखता हूं, भविष्याणि च अर्जुन और भविष्य में जो आएगा उसको भी देखता हूं। माम तु वेद मैं तो जानता हूं, माम तु वेद न कस, लेकिन वो मुझे नहीं जानते। तो भगवान सब जानते हैं भूत भविष्य वर्तमान को, क्यों, क्यों भगवान का जस शरीर अजन्मा है, सच्चिदानंद विग्रह है, वो हमारे जैसा हार्ड मांस का बना हुआ नहीं है, वो तो सच्चिदानंद है, जैसे मिश्री का बना हुआ मिश्री का बना हुआ खिलौना अगर ट्रैक्टर का है, हाथी का है, तो भी मिश्री है, क्योंकि सारे का सारा मिश्री का बना हुआ है। ऐसे भगवान का शरीर सारे का सारा सच्चिदानंद है। हमारे शरीर में आत्मा सिर्फ सच्चिदानंद है। ये शरीर तो हार्ड मांस का बना हुआ है, प्रकृति ने बनाया है, जल वायु आकाश अग्नि और ये पांच तत्व का बना हुआ है। भगवान का शरीर पांच तत्व का बना नहीं है, वो चिन्मय है। इसलिए वो सब कुछ जान सकता है, देख सकता है, सब चीज का उनको पता है। ये आपको क्यों नहीं जान सकते भगवान? कारण बताते हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेना द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। हे परन्तप अर्जुन, इच्छा द्वेष समुत्थेना, इनके अंदर एक तो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, ये मुझे चाहिए, और एक होता है द्वेष, ये अच्छा नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। ये क्या है दोनों? द्वंद्व, ये है द्वंद्व, जोड़े संसार में। क्या जोड़े हैं? अच्छा है खराब है, सुख है दुख है, गर्मी है सर्दी है, ये घर मेरा है, ये पत्नी मेरा है, ये दुकान मेरा है, ये मैं और मेरा, तू और तेरा। इन द्वंद्वों में मोहेना, इसमें मोहित है ये सारे, ये द्वंद्वों में मोहित है। इसलिए सर्वभूतानि सम्मोहम, ये सारे ही प्राणी बिचारे मोहित हैं। किसमें? द्वंद्वों में, मेरे तेरे में, और दुख सुख में, और लाभ हानि में, मान अपमान में मोहित हैं। और सर्गे, सर्गे मतलब जब सृष्टि होती है, यांति ऐसे बार बार जन्म लेते हैं और मरते हैं, क्योंकि इनके द्वंद्वों से मुक्त नहीं हुए हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? फिर कौन आपको जान सकता है? दोहन से मोह से कौन मुक्त होगा? तब भगवान कहते हैं, ये श्लोक बोलिए, ये शाम तो अंतगतम पापाम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। ये शाम तो अंतगतम पापम, जिनके पापों का अंत आ गया, पुण्य कर्म जन्म नाम पुण्य कर्म नाम, जिसके पुण्य कर्म जन्म प्रकट हो गए हैं, ते द्वंद मोह निर्मुक्त, वो द्वंद्वों के मोह से मुक्त हो जाते हैं। भजन्ते माम दृढ़व्रता, हो दृढ़व्रत करके मेरा भजन में मेरी भक्ति में लगते हैं। बोला पुण्य क्या है? बोला पुण्य है भक्तों का संग। जिसको मेरे भक्तों का संग मिल गया, उस संग से उनका पुण्य उदय हो गया, और जैसे उनका पुण्य उदय हो गया, द्वंद समाप्त हो गए, और जैसे द्वंद समाप्त हो गए, वो दृढ़ता से मेरी भक्ति करते हैं। तो जिसका पाप समाप्त होता है, पुण्य उदय होता है, वो क्या है? ऐसे धर्मी सत्संग में आते हैं, मंदिर में आते हैं, पुण्य आत्मा। और मंदिर में कौन होता है? भगवान के भक्त होते हैं। जब तक भक्तों के साथ संग नहीं हुआ है, तब तक पुण्य अपना फल नहीं देगा। इस श्लोक के भावार्थ में भाव लिखा है कि विश्व के अंदर प्रभुपाद का संग पाकर कितने लोग मोह से और द्वंद्वों से मुक्त हुए। एक भक्त के संग ने पूरे दुनिया के अंदर परिवर्तन लाए, पूरी दुनिया में बहुत बड़ा आंदोलन स्थापित हो गया एक व्यक्ति के संग से। इसके लिए भागवत में लिखा है, उद्घायन्ति नृत्यन्ति क्वचित पुनाति भुवनम। कोई एक व्यक्ति भी आनंद में भगवान के प्रेम में मगन होके उच्च स्वर में गाए नाचे, कभी रोए और कभी हंसे, ऐसा व्यक्ति भूमंडल को पवित्र कर सकता है, एक व्यक्ति। और प्रभुपाद ने क्या किया? और न्यूयॉर्क के उद्यान में ऐसे ही आनंद में मगन होके कीर्तन किया और गाया नाचा। 70 साल की उम्र के बाद प्रभुपाद नृत्य करने लगे। एक जगह तो नृत्य ये सिखाया योग वाला, वो हमारा केशव जो यहाँ से वहां, और एक दिन तो प्रभुपाद ने ऊपर नीचे ऐसे कूदना शुरू किया तो सारी संस्था में चिट्ठियां पहुंच गई, स्वामी जी ने नया नृत्य शुरू किया है, और सब कूदना शुरू कर दिए। ये लॉस एंजल्स के मंदिर को पहली बार एक चर्च को मंदिर के लिए खरीद किया, और उस दिन भक्ति सिद्धांत के गुरु महाराज प्रभुपाद जी के भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज स्तोत्र सौत शिला प्रभुपाद का व्यास पूजा दिन था, और प्रभुपाद आनंद में मगन करके ऐसा अद्भुत नृत्य के बाद कहा कि मैं आज व्यास पूजा में मैं गुरुदेव को ये मेरे सारे शिष्य और ये सारा नया मंदिर अर्पण करता हूँ, ये उनकी कृपा से सारी सफलता मिली है। तो ऐसे महात्मा पूरे विश्व का पुण्य उदय कर सकते। भक्तों ने एक बार प्रभुपाद को कहा हम बहुत बड़े फॉर्चुनेट हैं, हमारा सौभाग्य है। प्रभुपाद ने कहा तुम सौभाग्यशाली नहीं, मैंने तुम्हारा सौभाग्य बनाया है। आई मेड यू फॉर्चून, मैंने आपका सौभाग्य बनाया है। तो भास के जीवन में पुण्य का तब उदय होगा जब साधु संग होगा, साधु संग होगा, साधु संग होगा। साधुओं के संग से हरि कथा मिलेगी और हरि मत कथा हृदय को पवित्र करते हैं। अब लिखते हैं जिनका पुण्य उदय हो गया, जिनको साधु का संग मिल गया, उन लोगों का क्या विचार होगा? वो क्या भोग के लिए कहीं जाएंगे, कुछ दुनिया में मांगेंगे? नहीं, उनका भाव ये है, बोलिए जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ते ये ते ब्रह्म तदो विदो कृत्सनम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। वो फिर क्या चाहते हैं? जरा मरण मोक्षाए। जरा कहते हैं बुढ़ापे को, मरण कहते हैं मृत्यु को। ऐसे भक्त जिनका पुण्य उदय हुआ, जिनको भक्तों का संग हुआ, उनके मन में आएगा कि अब बुढ़ापे से कैसे बचे, मृत्यु से कैसे बचे, जन्म मृत्यु के चक्कर से कैसे बचे, जिसका कोई इलाज नहीं है दुनिया में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। ये उनको ज्ञान हो जाएगा। ये ज्ञान के लक्षणों में आता है 13वें अध्याय में कि जन्म लेना पीड़ा वाला है, मृत्यु भयानक है, बुढ़ापा तो भगवान जिसको आता है उसको पता लगता है कि कितना दुखदायी है, और ऐसा कोई नहीं है जिसको पीड़ा जीवन में नहीं आई हो शरीर में। और इन चारों चीजों का इलाज किसी के पास नहीं है, मृत्यु को कोई नहीं रोक सकता है, और बीमारी एक जाएगी दूसरी आएगी। कभी तो हम उस माता से डरते थे, माता चली गई पोलियो आया, पोलियो चला गया तो एड आया, अब ये कैंसर आया। ये तो संसार में व्याधि आती रहेगी, ये शरीर का धर्म है, इसको तो रोग लगेगा तभी मरेगा ये, और मृत्यु आना ही है। जो बुद्धिमान है जरा मरण मोक्षाय, इस बुढ़ापे से, इस मृत्यु के भय से जो मुक्त होना चाहते हैं, वैसे भी कहते हैं संत जगत में आते हैं बड़े काम को मिटा के, भय मृत्यु का अमर जीवन बनाते हैं। वैसे भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता का उपदेश कब दे रहा है? जब कुरुक्षेत्र के रणभूमि में मौत का खेल खेला जा रहा है, उस मौत के खेल के बीच में अमृता का संदेश दे दिया। भागवत का अवतार कब हुआ है? जब परीक्षित को तक्षक सर्प से मौत का साप मिला है, तब भागवत अमृत प्रकाश हुआ है और मौत के भय से परीक्षित मुक्त हुआ है। तो साधु तो मौत के भय से मुक्त कराते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि की इलाज किसके पास है, इसकी चिकित्सा किसके पास है? तो कहते हैं ये तो है भगवान के प्यारे भक्तों के पास। वो क्या करते हैं जिनको ये मुक्त होना है बुढ़ापे से और मृत्यु से? क्या करते हैं? मामाश्रित्य यतन्ति ये, वो मेरा शरण ले लेते हैं। भगवान कहते हैं मेरा शरण ले लेते हैं क्योंकि मैं अमर हूं, मेरे पास आएंगे तो वो भी अमर हो जाएंगे। देवता के पास जाएंगे, देवता अमर नहीं है तो अमर कहां से होंगे? तो मैं अमर हूं, मैं नित्य हूं, मैं शाश्वत हूं, वो मेरा शरण ले लेते हैं और शरण लेके सो जाते हैं। नहीं, यतन्ति, यतन्ति का मतलब यतनशील है। वैसे हमारी सामान्य भाषा में यति कहते हैं साधु सन्यासी को, कहते हैं जति है। यतनते का मतलब बड़े यतनशील हो जाते हैं, भोगों में नहीं फंसते हैं, माया के चुंगल में नहीं फंसते हैं, माया लुभावने के लिए कुछ भी करे, लेकिन वो क्या करते हैं, दृढ़ व्रत, उन्होंने दृढ़ व्रत धारण कर दिया है। दृढ़ व्रत भक्ति की परिभाषा है, जैसे ये भक्त है दृढ़ व्रत किया है कि हमारे को कोई भी नशा नहीं करना है, दृढ़ व्रत ले लिया नहीं करना है नशा कोई, क्योंकि नशा तो हमारे को तपस्या नहीं करने देगा, और ये जीवन तो तपस्या के लिए, हमारे को पशु का मरा हुआ मांस आहार नहीं करना है, क्योंकि ये हमारा पेट कब्रस्तान थोड़ी बनाना है, इसके अंदर भगवान रहता है, कहां मरे मुर्दे डालने, नहीं करना है नहीं करना है। वो पक्का निर्णय ले लेते हैं कि हमको ये काम नहीं करना है, पक्का दृढ़ व्रत लेते। विवाह करना ही नहीं है, और अगर करना है तो विवाह से बाहर सबको माता समझना है, ये वचन, ये दृढ़ संकल्प कर लेते। और जुआ नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, सत्य भगवान की सत्य वाणी, इसके अलावा कुछ नहीं करना, ये दृढ़ व्रत लेते। और ये दृढ़ व्रत लेते हैं कि हम निरंतर समय से भगवान के नाम का जप करेंगे, भगवान के पुस्तकों का वितरण करेंगे, ये जीवन में दृढ़ व्रत ले लेते हैं। उनको क्या प्राप्त होता है, ते ब्रह्म तद विधो कृत्सनम, वो ब्रह्म के बारे में सब कुछ जानते हैं। ये ब्रह्म क्या है, ये आठवें अध्याय में आएगा, कल इसके ऊपर चर्चा करेंगे। वो अपने आप को फिर समझते हैं कि मैं ब्रह्म हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ये भोग शरीर के होते हैं, ब्रह्म का भोग तो भगवान का चिंतन है। ब्रह्म तो आनंद कब लेता है, ब्रह्म सुखम अनंतम तपो दिव्यम पुत्र का, हे मेरे बेटो दिव्य तपस्या करो, शुद्धेत अपने हृदय को शुद्ध करो, ये तुच्छ इंद्रियों के भोगों के पीछे मत भागो जो कुत्ते बिल्ले सुअर को भी उपलब्ध हैं। फिर क्या करो, तपो दिव्यम, दिव्य तपस्या करो, क्या मिलेगा, ब्रह्म सुखम अनंतम, ब्रह्म का अनंत सुख प्राप्त होगा। तो ये ब्रह्म को कृत्सनम पूरा जानते हैं, और क्या जानते हैं, बोला अध्यात्म को जानते हैं, उस आत्मा का स्वरूप क्या है ये जानते हैं, वो ब्रह्म का स्वरूप क्या है वो जानते हैं, ब्रह्म कितना आनंदमय है वो जानते हैं, और ब्रह्म कैसे सुखी होता है उसका, उनको अध्यात्मिक का मतलब स्वभाव जो जीव का है उसको जानते हैं, और क्या जानते हैं, कर्म चाखीलम, और कर्म के विषय में परिपूर्ण जानकारी हो जाती है कि कर्म करेंगे तो फल भोगना पड़ेगा, अच्छा करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा करेगा, लेकिन जब तक कर्म करते रहेंगे तब तक उसके फल भोगने को लिए शरीर लेना पड़ेगा। इसलिए वो पूर्ण रूप से जब कर्म को जान जाते हैं तो फिर कर्मों के बंधन से मुक्त होने का साधन ढूंढ लेते हैं, और क्या जानते हैं, वो जब मेरा शरण ले लेते हैं, जन्म मृत्यु से बचना चाहते हैं, तो कम से कम ये आठ चीजें जानते हैं। आगे क्या जानते हैं, साधि भूतादि देवम माम साधि यज्ञम च ये विदुहो प्रयाण काले पिच माम ते विदुर युक्त चेतसा। वो अधिभूत को जानते हैं, अधिभूत क्या है, ये सारी प्रकृति, ये ब्रह्मांड पूरा अधिभूत है, भगवान का विश्व रूप है, ये इसको जानते हैं, अधिदेव को जानते हैं, ये सारा भौतिक जगत भगवान के विश्व रूप के ऊपर आश्रित है, जिसके सारे अंग देवता हैं, ये उसको भी जानते हैं, और क्या जानते हैं, अधियज्ञ के, यज्ञ के अधिपति को जानते हैं कि यज्ञ पुरुष कौन है, कहां रहता है। वैसे यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु है, विष्णु को यज्ञ बोलते हैं। और ये अंतिम शब्द है, और क्या जानते हैं, प्रयाण काले, प्रयाण काले का मतलब अंत समय में जब संसार से प्रायण होता है, चलना पड़ता है, प्रयाण काले भी माम, उस वक्त भी मुझे, कृष्ण कहता है मुझे, ते विदु, वो जान लेते हैं, क्यों, उसके उनको क्या विशेषता होती है, युक्त चेतसा, उनका चित्त मुझसे जुड़ा हुआ होता है, उनके चित्त में मेरी मूर्ति विराजमान होती है, इसलिए अंतकाल में वो मुझे पा लेते हैं। ये है सबसे बड़ी परीक्षा अंतकाल में भगवान का। अंते नारायण स्मृति, अंतकाल में भगवान की स्मृति हो जाए तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो यहां सातवां अध्याय परिपूर्ण होता है। सातवें अध्याय में मुख्य बात जो है, भक्तों के संग से, भगवान के बारे में जानकारी होने से, जन्म मृत्यु से मुक्त होकर भगवान को पाया जा सकता है। नहीं तो इसके अंदर माया से मुग्ध लोगों का वर्णन है, जो भगवान का शरण नहीं लेते हैं। भगवान के पास जाने वाले सुकृतिनों का चार प्रकार के वर्णन है, फिर देवता की पूजा करने वाले कम बुद्धि वालों का वर्णन है, और बिना बुद्धि वाले निराकारवादियों का वर्णन है, मायावादियों का भी। और भगवान कहते हैं ऐसे लोगों को मैं दर्शन नहीं देता हूं, योग माया से ढका रहता हूं, लेकिन मेरे भक्तों के सामने मैं प्रकट होता हूं, क्योंकि वो दृढ़ व्रत धारण करके मेरी पूजा करना चाहते हैं, और उनके पुण्य इसलिए उदय हुए हैं कि उनको भक्तों का संग मिल गया है। तो आप भाग्यशालियों को श्रील प्रभुपाद जी का, उनके अनुयायियों का संग मिल रहा है, और इन भगवत गीता के अंदर प्रभुपाद जी स्वयं अपने तात्पर्य के रूप में आपको सबसे अच्छा संग दुनिया में, अच्छा पुस्तक, अच्छा शास्त्र, सबसे बड़ा संग है। भक्तों के संग के साथ साथ अच्छा शास्त्र संग है। जिसके पास अच्छा शास्त्र, उसकी अच्छी बुद्धि, उसका अच्छा विचार, उसके जीवन में भगवान की भक्ति प्रकट होना सुलभ हो जाती है। तो इन शब्दों के साथ सातवें अध्याय को विराम पे पहुंचाते हैं, कल से आठवें अध्याय को आरंभ करेंगे। अक्षर ब्रह्म योग है, उसमें भगवान के इन आठ प्रश्नों को अर्जुन, ये आठ प्रश्न पूछेगा। पहले दो श्लोकों में अर्जुन ये प्रश्न पूछेगा, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम अच्छते अधि यज्ञम कथा, कहाँ है अधि यज्ञ, और प्रयाण काले अंत समय कैसे आपको भगवान याद करेंगे। ये आठ प्रश्न कल अर्जुन के हैं, और आठवां अध्याय भगवान अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देंगे, और विशेष रूप में कहेंगे अंतकाल में भगवान को कैसे पाया जाता है। और तब नवें अध्याय में फिर भगवान, जहां सातवें अध्याय में ज्ञान विज्ञान है, वहीं से शुरू करेंगे, क्योंकि अभी ज्ञान विज्ञान की कथा चल रही है, लेकिन अर्जुन का बीच में प्रश्न हो जाता है, इसलिए आठवां अध्याय बीच में आ जाता है। नवें अध्याय में फिर ज्ञान विज्ञान शुरू हो जाएगा। तो कल आप सुभाष के सत्र में हम आठवें अध्याय का आरंभ करेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा।